हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही ने माधवी की तरफ देखते हुए कहा, ताई जी, कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ वही संस्कारी बहू है जिसको खाना बनाना और घर के काम करना आता है। फिर उसने राविया की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें बाहर जॉब करना है? राविया ने जल्दी से होठों पर बड़ी सी मुस्कान लेकर कहा, मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं बहुत अच्छी इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने जाऊंगी तो मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी, और मुझे जॉब करनी भी है। अनाही ने मुस्कुराकर कहा, सुबह खाना बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और ऑफिस में तुम मेरी हेल्प कर देना, आधा आधा काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर राविया के चेहरे पर जहाँ राहत थी तो वहीं माधवी ने अपनी चेयर से उठकर गुस्से में कहा, क्या सब कुछ तुम दोनों की मर्जी का होने वाला है जो अपने अपने काम डिस्कस कर रही हो? मुझे मेरी बहू बिगड़ैल नहीं चाहिए जो रात को 9 बजे तक बाहर रहे। मैं इसे इतनी देर तक जॉब नहीं करने दूंगी, और इसे खाना भी बनाना होगा। मैं भी देखती हूँ इसे खाना बनाना कब तक नहीं आता है, और जब तक इसे खाना बनाना नहीं आएगा ये ऑफिस नहीं जाएगी। इतना बोलकर माधवी वहाँ से जाने लगी तो निवेदिता जल्दी से चेयर से उठी और माधवी की तरफ जाते हुए बोली, भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? बच्ची है, नहीं आता होगा। रोहान भी तो कभी खाना नहीं बनाया है, हम उसे भी कुछ नहीं कहते हैं, और ये भी उसी की तरह तो है। आप क्यों दिल पर ले रही हैं? बच्ची है, जल्दी सीख जाएगी। अनाही सिखा देगी उसे खाना बनाना। आप ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाइए प्लीज। जिग्नेश ने अनंत की तरफ देखते हुए कहा, शादी की है ना तुमने, तो अपनी पत्नी की तरफ दारी नहीं करोगे? ताना सुनाने के लिए उसके पास सास है, काकी सास है, उसकी जेठानी है, उसका ससुर है, पर तुम्हें तो कम से कम उसका स्टैंड लेना चाहिए। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी माँ चाहे 1000 जगह गलत हो, मैं हमेशा उसका साथ देता हूँ, क्या तुमने कभी देखा नहीं है? ये सुनकर राविया ने मुस्कुराते हुए जिग्नेश को देखा। शायद वही तो यही चाह रही थी कि उसका पति उसकी तरफदारी करे, पर यहाँ नॉर्मल पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था, जिस वजह से बेचारा अनंत तो कुछ सोच भी नहीं पाया कि उसे बोलना क्या चाहिए। उसने जिग्नेश की तरफ देखकर सर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, पर माँ की कोई भी बात काटना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत जल्दी बुरा मान जाती है ऐसी बातों का, और आइंदा मुझे अगर लगा कि मुझे राविया की साइड लेनी चाहिए तो मैं जरूर लूंगा। निवेदिता के कहने पर माधवी भी वापस चेयर पर आकर बैठ चुकी थी। उन लोगों ने डिनर किया और उसके बाद अपने कमरों में चले गए। रितेश और जिग्नेश दोनों स्टडी रूम में थे, वे किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं राधिका भी माधवी के पास चली गई थी। उसने बेड पर बैठकर माधवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, जी, आपको एक बात कहूँ, आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इससे तो आपकी बहू आपके खिलाफ हो जाएगी और दूसरी टीम में जाकर मिल जाएगी। माधवी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, कौन सी दूसरी टीम? क्या यहाँ कोई मैच चल रहा है जो हम टीम बनाएंगे? राधिका ने जल्दी से इतराते हुए कहा, अरे जीजी, आप तो समझती नहीं है, अनाही, रोहान और उनकी फैमिली की टीम, हम लोग उनके खिलाफ काम करते हैं ना, और आपने तो आज उस राविया को आते ही अनाही की तरफ कर दिया। आपने देखा नहीं कैसे खुश होकर दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थीं? अगर इन फ्यूचर कुछ बिगड़ा तो आपका बेटा भी आपके खिलाफ हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिस वजह से राविया हमेशा आपकी तरफदारी करे, और उसकी वजह से अनंत को भी आपकी तरफ होना ही पड़े। माँ और पत्नी दोनों के आगे मर्द की बिल्कुल नहीं चलती है, पर माँ और पत्नी में से हमेशा वो पत्नी की तरफदारी करेगा, ये आप लिख कर ले लो। तो समझदारी इसी में है कि आप भी अपनी बहू को उतनी ही छूट दें जितनी निवेदिता भाभी दे रही हैं अपनी दोनों बहुओं को। माधवी ने सोचते हुए कहा, कभी कभी बहुत अकलमंदी वाली बात करती हो। ये अनाही कितनी चालाक है, कितनी जल्दी लोगों को अपने बस में करना आता है इसे। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, पर उस लड़की में ऐसे संस्कार तो होने चाहिए ना। खाना तक नहीं बनाना आता है, कैसी बच्चों जैसी थी वो। इतनी समझदार कभी नहीं बन पाएगी जितनी समझदार रोहान की पत्नी है। मुझे वैसी बहू चाहिए थी जो किसी को भी हाजिर जवाब दे पाए, किसी के भी सामने कमजोर ना पड़े। उसका तो 2 मिनट में चेहरा सफ़ेद पड़ गया था मेरी एक डांट सुनकर ही। वहीं अनाही को देखा, कैसे कैंची की तरह जबान चलती है उसकी। राधिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हम क्या ही कर सकते हैं, जैसी हमारी किस्मत है हमको वैसी ही बहू मिलेगी। वहीं अनंत के कमरे में एक तरफ बेड पर राविया लेटी हुई थी तो दूसरी तरफ अनंत। अनंत तो इतना थका हुआ था कि उसे लेटते ही नींद आ चुकी थी, पर राविया के दिल में तो खलबली मची हुई थी। वो एक ऐसी जगह आकर फंस चुकी है जहाँ से निकल पाना उसे अब नामुमकिन लग रहा था। ना उसकी सास उसे पसंद करती है और ना ही वो अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है। अचानक ही उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वो चौंकते हुए पलट गई। उसने देखा, ये अनंत था जिसने अपना एक पैर राविया के पैरों पर रखा हुआ था और एक हाथ उसकी कमर पर कसा हुआ था। राविया कुछ बोल पाती उससे पहले ही अनंत ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए एक गहरी सांस ली। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो गहरी नींद में था। अनंत को हमेशा ही इस तरीके से सोने की आदत थी। अगर वो अकेला सोता है तो उसकी बाहों में हमेशा एक पिलो रहता है। ऐसी आदतें अक्सर कई इंसानों में होती हैं। राविया ने मुश्किल से सांस ली। उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ रही थी, जैसे उसने बिजली की नंगी तारों को छू लिया हो। उसकी सांसें बढ़ते पाल के साथ बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अनंत का हाथ उसके कमर से हटकर अब उसके सीने की तरफ आ रहा था। राविया ने आंखों को भींचते हुए अपना निचला होंठ काट लिया और मन ही मन भगवान को याद करने लगी। अनंत ने अपना एक हाथ उसकी गर्दन में फंसाते हुए अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया, जिसके साथ ही उसके ठंडे होंठ राविया को अपनी गर्दन पर महसूस हो रहे थे। उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मुश्किल से अनंत का हाथ अपनी गर्दन से हटाया और फिर झट से उठकर बैठ गई। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसे अब भी अपनी गर्दन पर अनंत के होठों का ठंडा स्पर्श महसूस हो रहा था। उसने फिर अनंत का वो भारी भरकम पाँव अपने ऊपर से हटाना चाहा, पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वो अनंत का पैर अपने पैर से हटा नहीं पाई। उसने गुस्से में मुड़कर अनंत की तरफ देखा, जो अब भी बेफिक्री से सोया हुआ था। अनंत ने अगले 2 मिनट में ही वापस राविया की कमर पर हाथ रख लिया था, जिसके साथ ही वो धम से बेड पर जा गिरी और अनंत ने उसे बिल्कुल किसी रुई की बोरी की तरह खुद में समेट लिया। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे अनंत उसे अपनी बाहों में कस रहा था, वो और भी ज्यादा सिमट रही थी। राविया से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर निमानी, आप क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए मुझे। अनंत भी ठीक उसी तरह से चिल्लाते हुए घबराकर राविया से झट से दूर हो गया। वो बेड के लगभग लास्ट कोने पर जा चुका था। राविया ने देखा कि वो गिरने ही वाला है, तो उसने जल्दी से अनंत का हाथ पकड़ लिया, जिसके साथ ही अनंत ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी, कहीं किसी बदतमीजी के। उसकी बात पूरी होने से पहले राविया ने गुस्से में कहा, आप नीचे गिरने वाले हैं और बदतमीजी आप मेरे साथ कर रहे थे। मैं आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही थी। क्या मैं आपको तकिया नजर आ रही हूँ, जो मुझे अपनी बाहों में भर रहे थे और नहीं छोड़ रहे थे।
अनंत ने आंखें बड़ी करके अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मैं और तुम्हें अपनी बाहों में भर रहा था। छी, मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, समझी तुम। राविया ने गुस्से में कहा, ओ अच्छा, इतनी गंदी हूँ मैं। अनंत ने कहा, ऑफ कोर्स, आईने में अपनी शक्ल देखो और फिर मुझे देखना। राविया बस दाढ़ पीस कर रह गई और उसने अनंत का हाथ छोड़ दिया। इसके अगले ही पल अनंत बेड से नीचे जा गिरा और उसकी एक चीख निकल गई, जिसे सुनकर राविया के चेहरे पर सैटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई।